एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम एक ऐसी दवा के बारे में गहराई से जानेंगे जिसने हाल के वर्षों में मेडिकल दुनिया में, खासकर मेंटल हेल्थ में, काफी हलचल मचाई है।
हाँ, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसका सफर बड़ा ही मतलब उतार चढ़ाव वाला रहा है।
बिल्कुल, युद्ध के मैदान में जान बचाने वाली दवा से लेकर वो बदनाम पार्टी ड्रग और अब गंभीर डिप्रेशन के इलाज में एक नई उम्मीद।
हम बात करें डॉक्टर बिटा मोगदाम की किताब किटामाइन की, और ये सिर्फ एक दवा की कहानी नहीं है, ये विज्ञान, समाज, हमारे दिमाग की जो पहेलियां हैं उन सब की कहानी है।
हाँ, ये दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा अणु हमें न्यूरोसाइंस, ड्रग पॉलिसी, यहाँ तक कि कल्चर को समझने में मदद कर सकता है।
और आज के समय में ये चर्चा और भी जरूरी है ना?
बिल्कुल, मेंटल हेल्थ, खासकर वो गंभीर डिप्रेशन जिसे ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन कहते हैं, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है।
सही कहा। दशकों से इस फील्ड में कोई खास नई खोज हुई नहीं थी, तो ऐसे में केटामीन का आना, वो भी इतने अलग तरीके से काम करते हुए, कई लोगों के लिए एक ताजी हवा जैसा है।
हाँ, इसका सफर ही देखें तो कितना अजीब है। पहले सुरक्षित एनेस्थीजिया, फिर स्पेशल के नाम से बदनाम।
और अब डिप्रेशन के इलाज में, मतलब आधी सदी की सबसे बड़ी खोजों में से एक मानी जा रही है। ये पहली ही तो किताब सुलझाती है।
तो इस अनोखे सफर को समझने के लिए जरा लेखिका को भी जान लें। डॉक्टर बिटा मोगदाम, ये कोई बाहरी पत्रकार या शौकिया राइटर नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ओरेगॉन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी में बिहेवियरल न्यूरोसाइंस डिपार्टमेंट की हेड हैं, जानी मानी न्यूरोसाइंटिस्ट हैं।
और उनकी खासियत,
हाँ, खास बात यह है कि उन्होंने दशकों तक ब्रेन फंक्शन पर रिसर्च की है, और खास तौर पर ग्लूटामेट सिस्टम पर। और यही वो सिस्टम है जिस पर किटामिन मुख्य रूप से काम करता है।
अच्छा,
तो जब वो लिख रही हैं, वो सिर्फ जानकारी नहीं दे रही, वो एक लैब साइंटिस्ट का नजरिया, उनका तजुर्बा साझा कर रही हैं। उन्होंने इस फील्ड को बनते देखा है, उसमें अपना योगदान दिया है।
मतलब ये किताब सतह पर नहीं तैरती, गहराई तक जाती है। तो कुल मिलाकर किताब है किस बारे में?
देखिए, ये किताब असल में किटामाइन नाम के अणु की एक तरह की जीवनी है। ये दिखाती है कि कैसे इस एक दवा के आसपास साइंस, मेडिसिन, कल्चर, सरकारी नीतियां सब उलझे हुए हैं।
और किताब का जो सेंट्रल सवाल है वो यही है कि कैसे एक मतलब विवादास्पद एनेस्थेटिक और पार्टी ड्रग,
मानसिक स्वास्थ्य के इलाज में दशकों की सबसे बड़ी सफलता बन गया।
हाँ, और इससे मनोरोग विज्ञान के भविष्य के लिए क्या सबक मिलते हैं? ये उस बड़ी कमी को भी तो उजागर करती है कि गंभीर डिप्रेशन के लिए हमारे पास कोई नया तेजी से काम करने वाला इलाज था ही नहीं दशकों से।
बिल्कुल, SSRIs थी पर वो सब पर काम नहीं करती और असर दिखाने में हफ्ते या महीने लगा देती हैं।
केटामाइन न सिर्फ एक समाधान की तरह उभरा, बल्कि इसने डिप्रेशन को समझने और उसके इलाज पर रिसर्च की, कह सकते हैं पूरी दिशा ही बदल दी।
हाँ, किताब हमें 1960s के दशक की लैब से वियतनाम युद्ध के मैदानों तक, फिर अंडरग्राउंड रेव पार्टियों से होते हुए 21वीं सदी के क्लिनिक तक ले जाती है।
इसमें सब कुछ है। ये दिमाग में कैसे काम करता है, सिज़ोफ्रेनिया को समझने में इसका क्या रोल रहा, नशे के रूप में इस्तेमाल के खतरे,
और हाँ, डिप्रेशन के इलाज में वो क्रांति।
चलिए इस सफर के कुछ अहम पड़ावों पर जरा और बात करते हैं। किताब के शुरू में इसके इतिहास की बात है। कहानी केटामाइन से नहीं बल्कि उसके एक रिश्तेदार पीसीपी से शुरू होती है।
हाँ, पीसीपी फेनसाइक्लिडीन 1950s के दशक में बना था, एनेस्थेटिक के तौर पर असरदार था, पर इसके साइड इफेक्ट्स बहुत खतरनाक थे।
क्या होता था?
लोगों को अजीब वहम, गुस्सा, साइकोसिस जैसी गंभीर हालतें हो जाती थी। मतलब इंसानों के लिए ये ठीक नहीं था।
यहीं पर केमिस्ट कैल्विन स्टीवंस आए। 1962 में उन्होंने पीसीपी में कुछ बदलाव किए और एक नया कंपाउंड बनाया, CI-581, जो बाद में केटामाइन कहलाया।
हाँ, और शुरुआती टेस्ट में पता चला कि ये कम देर असर करने वाला एनेस्थेटिक था, और इसके साइकोलॉजिकल असर पीसीपी से अलग थे। वो डरावने वहम की जगह एक अजीब सपने जैसी डिसोसिएटिव हालत पैदा करता था।
डिसोसिएटिव मतलब?
मतलब जैसे व्यक्ति को अपने शरीर या आसपास की दुनिया से थोड़ा कटा हुआ, अलग होने का एहसास हो।
अच्छा,
और इसका बड़ा इस्तेमाल वियतनाम युद्ध में हुआ है ना?
हाँ बिल्कुल, इसकी खूबी ये थी कि ये मरीज की सांस और ब्लड प्रेशर को बिना किसी बाहरी मशीन के सपोर्ट के बनाए रखता था,
जो युद्ध के मुश्किल हालात में बहुत काम आया होगा। बहुत जाने बचाई इसने। उसी दौर में जॉन लिली ऐसे कुछ लोग इसे चेतना की सीमाओं को जानने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे थे। दिखाता है कि खोजें अक्सर सीधी राह पर नहीं होती हैं।
ये तो हुआ इतिहास, पर ये दवा दिमाग में करती क्या है? ये आम एंटी डिप्रेसेंट से अलग कैसे है?
हाँ, यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। देखिए, पारंपरिक दवाएं जैसे प्रोजैक वगैरह, वो मुख्य रूप से सेरोटोनिन या डोपामिन पर काम करती हैं।
हाँ।
लेकिन केटामाइन दिमाग के सबसे अहम एक्साइटेटरी या कहें ऑन स्विच ग्लूटामेट सिस्टम को टारगेट करता है। ग्लूटामेट सीखने, याददाश्त, सोचने के लिए बहुत जरूरी है।
और केटामाइन इस सिस्टम में क्या करता है?
ये ग्लूटामेट के एक खास रिसेप्टर NMDA रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। समझिए जैसे ताले में गलत चाबी लगा दी, जो असली चाबी यानी ग्लूटामेट को लगने से रोकती है।
अच्छा।
माना जाता है कि यही ब्लॉकेज इसके एनेस्थेटिक और डिसोसिएटिव असर का मुख्य कारण है।
लेकिन अगर ये चीजों को ब्लॉक करता है तो डिप्रेशन में मदद कैसे? ये तो उल्टा लग रहा है।
हाँ, यहीं पर साइंस का एक कह सकते हैं विरोधाभास है। कुछ खास तरह के न्यूरॉन्स पर NMDA रिसेप्टर को ब्लॉक करने से दिमाग के कुछ हिस्सों में, खासकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में, ग्लूटामेट का अचानक से उछाल आता है, एक सर्ज।
ग्लूटामेट का उछाल ब्लॉक करने से?
हाँ, अजीब है पर ऐसा होता है। और माना जाता है कि ये ग्लूटामेट सर्ज BDNF जैसे जरूरी केमिकल्स को रिलीज करता है।
BDNF, ये क्या बला है?
BDNF को अक्सर दिमाग की खाद कहते हैं, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। ये नए सिनेप्स मतलब नर्व सेल्स के बीच नए कनेक्शंस बनाने और पुरानों को मजबूत करने में मदद करता है।
अच्छा।
इस प्रक्रिया को सिनेप्टोजेनेसिस कहते हैं। ऐसा लगता है कि तनाव और डिप्रेशन इन कनेक्शंस को कमजोर कर देते हैं। केटामाइन BDNF को बढ़ाकर इन सर्किट्स को तेजी से रिपेयर या रीवायर करने में मदद करता है।
वाह।
यही इसके तेजी से काम करने वाले एंटी डिप्रेसेंट असर का राज माना जाता है। घंटों में असर, हफ्तों या महीनों में नहीं, ये बिल्कुल अलग तरीका है।
ये तो कमाल है। लेकिन डिप्रेशन पर काम करने से पहले किताब बताती है कि केटामाइन का एक और अहम साइंटिफिक इस्तेमाल था सिज़ोफ्रेनिया को समझने में। वो कैसे?
हाँ, ये भी एक दिलचस्प मोड़ है। रिसर्चर्स ने पाया कि केटामाइन स्वस्थ लोगों में सिज़ोफ्रेनिया के कुछ खास लक्षणों की नकल पैदा कर सकता है।
कौन से लक्षण?
खास तौर पे वो जिन्हें नेगेटिव लक्षण कहते हैं, जैसे उदासीनता, इमोशंस की कमी या सोचने समझने में दिक्कत। ये वो लक्षण है जिनका इलाज पारंपरिक एंटी साइकोटिक दवाओं से मुश्किल था।
तो केटामाइन के इन प्रभावों से क्या पता चला?
इससे सिज़ोफ्रेनिया की ग्लूटामेट परिकल्पना को बल मिला। मतलब ये सोच कि सिज़ोफ्रेनिया सिर्फ डोपामीन की गड़बड़ी नहीं, शायद ग्लूटामेट सिस्टम में भी कोई समस्या है। केटामाइन का इन लक्षणों को पैदा करना इस थ्योरी का अहम सबूत बना।
तो एक तरफ साइंटिस्ट ये सब समझ रहे थे और दूसरी तरफ ये दवा लैब से निकलकर पार्टियों तक पहुंच गई।
बिल्कुल। 1990 के दशक में रेव और क्लब कल्चर में स्पेशल के, विटामिन के या सिर्फ के नाम से काफी पॉपुलर हो गई। इसके जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स थे, उनके लिए लोग इसे नशे के तौर पर इस्तेमाल करने लगे।
कम डोज में हल्का नशा, पर ज्यादा डोज में वो के होल वाली बात।
हाँ, के होल। ये शरीर और बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाने का एक गहरा अनुभव है। इसमें तेज भ्रम, मति भ्रम, टाइम स्पेस की समझ बिगड़ सकती है। कुछ लोग इसे स्पिरिचुअल या मौत के करीब का अनुभव ही बताते हैं, पर यह खतरनाक भी हो सकता है।
खतरों से क्या मतलब?
एक तो मनोवैज्ञानिक लत का खतरा है। दूसरे, इस हालत में दुर्घटनाएं हो सकती हैं। और सबसे गंभीर खतरा है लंबे समय तक भारी मात्रा में इस्तेमाल से होने वाला अल्सरेटिव सिस्टाइटिस।
ये क्या है?
ये ब्लैडर मतलब मूत्राशय की एक बहुत दर्दनाक बीमारी है, जिसमें वो बुरी तरह डैमेज हो जाता है। कई बार तो उसे निकालना पड़ता है। इसी बदनामी ने सालों तक इसके मेडिकल इस्तेमाल पर पर्दा डाले रखा।
और फिर आता है कहानी का सबसे नाटकीय मोड़, डिप्रेशन वाली क्रांति।
हाँ बिल्कुल। असली चुनौती थी ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन, यानी वो गंभीर डिप्रेशन जिसका इलाज मौजूदा दवाओं से नहीं हो पा रहा था। ऐसे मरीजों की संख्या काफी बड़ी थी, करीब एक तिहाई, और उनके पास कोई खास ऑप्शन नहीं थे। बहुत निराशा थी।
इसी माहौल में येल यूनिवर्सिटी के जॉन क्रिस्टल, डेनिस चार ने और उनके साथियों का काम सामने आया 90s के दशक के अंत और 2000 की शुरुआत में।
उन्होंने क्या किया?
उन्होंने TRD से पीड़ित मरीजों को केटामाइन की एक बहुत कम डोज, मतलब एनेस्थीजिया से काफी कम, नस के जरिए दी, IV इन्फ्यूजन।
और नतीजे?
नतीजे चौंकाने वाले थे। कुछ ही घंटों के अंदर ज्यादातर मरीजों ने अपने डिप्रेशन के लक्षणों में भारी कमी महसूस की। यहां तक कि जिन लोगों में सुसाइड के विचार बहुत ज्यादा थे, उनमें भी तेजी से सुधार देखा गया।
घंटों में? ये तो अभूतपूर्व था।
बिल्कुल। पारंपरिक दवाओं को हफ्ते लगते थे, यहां घंटों में बात बन रही थी।
इस खोज ने जैसे एक बांध तोड़ दिया,
दुनिया भर में रिसर्च तेज हो गई, ऑफ लेबल केटामाइन क्लिनिक खुलने लगे।
ऑफ लेबल मतलब?
मतलब जहां डॉक्टर से कानूनी मंजूरी ना होने के बावजूद अपनी समझ और जिम्मेदारी पर गंभीर डिप्रेशन के मरीजों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे।
और फिर आखिरकार 2019 में FDA ने एस्केटामाइन नाम के नेजल स्प्रे को मंजूरी दे दी।
हाँ, स्प्रावाटो नाम से। ये केटामाइन का ही एक रूप है और ये दशकों में पहली एंटी डिप्रेसेंट दवा थी जिसका काम करने का तरीका बिल्कुल नया था, ग्लूटामेट सिस्टम पर आधारित।
तो क्या केटामाइन डिप्रेशन का जादुई इलाज है? भविष्य यही है? किताब क्या कहती है इस पर?
नहीं, किताब इसे जादुई इलाज नहीं कहती। दरवाजा जरूर खोला इसने, पर यह शायद पहला कदम है। चुनौतियां अभी भी हैं।
जैसे कि?
सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसका असर अक्सर स्थायी नहीं होता, कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक ही रहता है, इसलिए बार बार ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है।
और साइड इफेक्ट्स, नशे की लत का खतरा और इलाज का खर्च भी तो है।
बिल्कुल, इसलिए अब रिसर्च इस दिशा में है कि क्या बेहतर केटामाइन जिसे अणु बनाए जा सकते हैं, मतलब ऐसी दवाएं जो केटामाइन की तरह तेजी से काम करें पर साइड इफेक्ट्स कम हो, नशे का खतरा ना हो और शायद गोली के रूप में ली जा सकें।
एक और एरिया जो उभर रहा है वो है केटामाइन असिस्टेड साइकोथेरेपी, KAP। इसका क्या मतलब है?
इसका आइडिया ये है कि केटामाइन से होने वाला वो डिसोसिएटिव या थोड़ा साइकेडेलिक अनुभव, वो खुद में थेरेप्यूटिक हो सकता है, खासकर जब इसे टॉक थेरेपी के साथ जोड़ा जाए।
अच्छा, कैसे?
ये मरीजों को उनके गहरे दबे हुए नेगेटिव विचारों और पैटर्न से बाहर निकलने, एक नई सोच अपनाने में मदद कर सकता है। थेरेपिस्ट इस दौरान उनकी मदद करते हैं।
और जाहिर है इसे लेकर कई नैतिक और रेगुलेटरी सवाल भी हैं। किसे ये इलाज मिलना चाहिए, खर्चा कौन उठाएगा, गलत इस्तेमाल कैसे रोके?
हाँ, ये सब बातें हैं। इस पूरी कहानी से कुछ बड़े सबक या थीम उभरते हैं। पहला तो ये कि साइंटिफिक खोज कितनी अप्रत्याशित हो सकती है।
हाँ, वो सेरेंडिपिटी वाली बात, एनेस्थीसिया के लिए बना, सिज़ोफ्रेनिया समझने में काम आया और फिर अचानक डिप्रेशन का इलाज बन गया।
बिल्कुल। दूसरा बड़ा सबक है डिप्रेशन को समझने के तरीके में आया बदलाव। वो सेरोटोनिन की कमी वाली सोच से हटकर ग्लूटामेट सिस्टम और ब्रेन प्लास्टिसिटी पर ध्यान गया।
ब्रेन प्लास्टिसिटी मतलब दिमाग के खुद को बदलने और ठीक करने की क्षमता।
हाँ, ये सोचना कि शायद दिमाग की वायरिंग में आई गड़बड़ी है जिसे तेजी से ठीक किया जा सकता है, ये एक बड़ा शिफ्ट है।
तीसरा है वो दोहरे इस्तेमाल वाली चीजों की मुश्किल, दवा भी नशा भी। स्पेशल K वाली इमेज ने इसके मेडिकल इस्तेमाल को सालों तक रोके रखा।
सही कहा, दिखाता है कि समाज की सोच और डर कैसे साइंस की तरक्की में रुकावट बन सकते हैं।
और चौथा जो मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद देता है वो है दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी की ताकत। केटामीन का इतनी तेजी से काम करना दिखाता है कि हमारा दिमाग कितना लचीला है, उसमें खुद को ठीक करने की जबरदस्त क्षमता है।
हाँ, ये एक बहुत पॉजिटिव संदेश है। किताब में कुछ बातें बहुत अच्छे से समझाई गई हैं, जैसे वो ट्रैफिक वाली उपमा।
हाँ, दशकों तक हमने सेरोटोनिन सिस्टम को बदलकर अवसाद ठीक करने की कोशिश की, जैसे शहर की ट्रैफिक समस्या को कारों का रंग बदलकर ठीक करना। केटामाइन ने दिखाया कि असली समस्या शायद सड़कों यानी सिनैप्टिक कनेक्शन में थी और उन्हें तेजी से ठीक करना संभव था।
कितनी बढ़िया तरह से समझाया है, सेरोटोनिन से ग्लूटामेट परिकल्पना का बदलाव।
एक और बात जो मुझे अच्छी लगी, केटामाइन को अक्सर गंदी दवा, डर्टी ड्रग कहा जाता है क्योंकि ये मस्तिष्क में कई जगहों पर असर करती है, लेकिन शायद यही जटिलता इसकी खूबी भी है।
हाँ, मतलब जो कमी लगती है वही ताकत भी हो सकती है।
और वो पहचान के संकट वाली बात भी सोचने लायक है। केटामाइन का इतिहास पहचान के संकट की कहानी है। क्या ये एनेस्थेटिक है, पार्टी ड्रग है या अवसाद का इलाज? जवाब है, ये सब कुछ रहा है।
और इसकी यात्रा अणु से ज्यादा हमारी बदलती वैज्ञानिक समझ और सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों को दर्शाती है।
बिल्कुल, समय और संदर्भ कैसे मायने बदल देते हैं।
तो ये सारी जानकारी, ये पूरी कहानी हमारे लिए, आम लोगों के लिए कैसे मायने रखती है, इसका हमारी जिंदगी से क्या लेना देना?
कई तरह से। देखिए, जो लोग गंभीर डिप्रेशन या TRD से जूझ रहे हैं या उनके परिवार वाले हैं, उनके लिए ये एक नई उम्मीद और एक नए विकल्प के बारे में भरोसेमंद जानकारी देता है।
और ये भी समझना जरूरी है कि ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक शक्तिशाली टूल है जिसके अपने फायदे और नुकसान हैं। उम्मीदें सही रखना जरूरी है।
बिल्कुल, डॉक्टरों और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए ये समझना जरूरी है कि दवा काम कैसे करती है, ताकि वो सही मरीज चुने, इलाज प्लान करें और इसे थेरेपी के साथ जोड़ें।
नीति बनाने वालों के लिए ये एक केस स्टडी है कि कैसे एक दोहरे इस्तेमाल वाली दवा को रेगुलेट करें।
हाँ, ताकि जरूरतमंदों तक पहुँचे भी और गलत इस्तेमाल भी ना हो। और हम सब के लिए ये विज्ञान को बेहतर समझने में मदद करता है, दिखाता है कि चीजें हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, एक बुरी मानी जाने वाली चीज में भी अच्छाई हो सकती है।
और हाँ, ये मेंटल हेल्थ से जुड़े कलंक को कम करने में भी मदद करता है। ये समझाता है कि डिप्रेशन दिमाग की केमिस्ट्री और सर्किट से जुड़ी एक वास्तविक बायोलॉजिकल समस्या है।
मेरे लिए इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सबक ये है कि विज्ञान का रास्ता कितना अप्रत्याशित और रोमांचक हो सकता है, कैसे एक अणु दशकों पुरानी सोच को हिला सकता है।
हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा नई संभावनाओं के लिए खुला रहना चाहिए।
और मेरे लिए सबसे बड़ी बात है दिमाग की खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता में एक नई आशा का जगना। केटामाइन का तेजी से काम करना दिखाता है कि बदलाव मुमकिन है, और शायद तेजी से मुमकिन है।
ऐसा लगता है कि हम मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के एक नए दौर की शुरुआत देख रहे हैं, जो दिमाग की प्लास्टिसिटी पर ज्यादा ध्यान देगा।
हाँ, और केटामाइन ने अनजाने में ही सही इस नए दौर का दरवाजा खोल दिया है।
डॉक्टर मुगदम की किताब इस जटिल अणु की एक संतुलित और वैज्ञानिक कहानी पेश करती है। ये सिर्फ केटामाइन के बारे में नहीं, बल्कि विज्ञान की प्रक्रिया, हमारे दिमाग की जटिलता और नई खोजों से मिलने वाली उम्मीद के बारे में भी है।
चलते चलते बस एक सवाल मन में आता है, अगर केटामाइन जैसी विवादास्पद दवा इतने बड़े बदलाव ला सकती है, तो और कौन सी अनदेखी या गलत समझी गई चीजें हमारे भविष्य के समाधानों की कुंजी हो सकती हैं?
सोचने वाली बात है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।